તારીખ 7/3/1996 પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા મહાવીરજીમાં થયેલ તત્વચર્ચા સળંગ નંબર 16
ક્યાં અંતર હે સરાગ સંયોગ દર્શન બુદ્ધિપૂર્વક જો વિકલ્પ કે સાથ સંયોગ દર્શન હે ઉનકો સરાગ સંયોગ દર્શન કહેતે હૈ સંયોગ દર્શન તો સંયોગ દર્શન હૈ ઓર સદોપયોગ નિર્વિકલ્પ દશા મેં વી સંયોગ દર્શન કો વિતરાગ સંયોગ દર્શન કહેતે હૈ ये संयोग दर्शन का चारित्र प्रधान कथन है। संयोग दर्शन का संयोग दर्शन प्रधान भी परिभाषा होती है, संयोग दर्शन की ज्ञान प्रधान भी परिभाषा हो सकती है, संयोग दर्शन की चारित्र प्रधान भी परिभाषा हो सकती है, संयोग दर्शन की पुरुषार्थ प्रधान भी परिभाषा हो सकती है और संयोग दर्शन की सुख प्रधान परिभाषा भी हो सकती है। लेकिन संयोग दर्शन तो संयोग दर्शन है, दूसरे गुण के परिणमन की मुख्यता से इस सब प्रकार के कथन शास्त्र में चलते हैं। तो वो कथन की पद्धति को समझेंगे तो किसी भी प्रकार का असमाधान नहीं होगा। दूसरा प्रश्न है, क्या चौथे गुण स्थान में भी वितराग सम्यक दर्शन हो सकता है? चौथा गुण स्थान ही वितराग सम्यक दर्शन से चालू होता है। निर्विकल्प वितराग सदोपयोग की दशा में ही सम्यक दर्शन की उपलब्धि होती है, इसलिए चौथे गुण स्थान में भी ये होता है। चिदानंद स्वरूप चिदानंद स्वभाव आत्मा का प्रभु वो किस प्रकार हो?
चिदानंद स्वरूप आत्मा का अनुभव किस प्रकार हो और ज्ञान को अंतर्मुख किस प्रकार किया जाता है और आत्मा का चिंतन किस प्रकार होता है?
दोहराता हूँ, चिदानंद स्वभाव आत्मा का अनुभव किस प्रकार हो और ज्ञान को अंतर्मुख किस प्रकार किया जाता है और आत्मा का चिंतन किस प्रकार होता है? क्या किसी प्रकार के आगे बात करें नहीं क्या
किसी प्रकार के जाप आदि किए जाते हैं या और कोई कार्य किया जाता है?
ठीक, क्या किसी प्रकार के जाप किए जाते हैं या कोई कार्य किया जाता है और कोई कार्य किया जाता है? चिदानंद स्वभाव आत्मा का अनुभव पद्धति से मुमुक्षु की भूमिका में प्रयोग किए जाते हैं तो अनुभव होता है, और कोई अनुभव होने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। अनुभव के लिए अनुभव का पुरुषार्थ चाहिए, अनुभव के लिए दूसरे प्रकार का पुरुषार्थ काम में नहीं आता। दूसरे प्रकार के पुरुषार्थ में जैसे कि यहाँ प्रश्न लिया कि कोई चिंतन करता है, कोई जाप करता है, कोई पूजा करता है, कोई भक्ति करता है, कोई शास्त्र स्वाध्याय करता है, कोई तप करता है, कोई यात्रा करता है, कोई दान देता है, कोई माला फेरता है, माला कोई जप कहते हैं, अनेक प्रकार के बाह्य साधन हैं। इससे कोई अनुभव होता है ऐसी बात नहीं है। अनुभव तो अनुभव के पुरुषार्थ से ही अनुभव होता है। अनुभव के लिए जो पुरुषार्थ होता है वही अनुभव में सिद्ध होता है, प्राप्त होता है, दूसरा कोई इसका इलाज नहीं है। अनुभव के लिए पुरुषार्थ माने वेदन पद्धति जो है, वेदन की जो पद्धति है, ज्ञान के तो दो प्रकार के परिणाम हैं अपने स्वाध्याय में, वो विषय तो काफी चला है कि एक विचार करते हैं, जानकारी करते हैं, और ज्ञान का एक वेदन रूप भी परिणमन होता है। इस वेदन का आविर्भाव करना, यही प्रकट रूप अनुभव करने की एक पद्धति है जो 15 गाथा में आचार्य महाराज ने दिखाई है। इसके पहले इस प्रकार की तैयारी होना, ये भी एक मोक्ष की भूमिका की कार्य पद्धति है। तो शुरू से ही वेदन के कार्य पद्धति में आने के लिए प्रारंभ से ही हमारी वेदना आत्मकल्याण के लिए होनी चाहिए। आत्मकल्याण के लिए विचार होता है, लेकिन वेदना होनी चाहिए। क्या विचार को सब करते ही है और अनंत बार किए भी हैं, वेदना कभी आई हो देख लो। तो ये जो वेदन है वही अनुभव है। जब वेदना में कोई आएगा, जैसे पूज्य सुगानी जी के जीवन का दृष्टांत लेते हैं, तो वो किस में आए थे? वेदना में आ चुके थे, वेदना में आए हुए थे। गुरुदेव का प्रवचन तो उस वक्त और भी 200-300 जने सुनते होंगे। ज्ञान और राग जुदा थे, वो बात क्या हमने नहीं सुनी? हाँ, नहीं जानी कि जानी भी है, सुनी भी है, पर उसी वक्त भी सुनने वाले थे। और फर्क क्या हुआ? फर्क योग्यता का था। किस प्रकार की योग्यता का था इसका विचार करें तो वो वेदना में थे। ये जो वेदना है उसकी भी डिग्री होती है। वो वेदना की चरम सीमा में थे। उतनी वेदना थी, उतनी वेदना थी कि जिंदा रहना मुश्किल हो जाए, प्राण छूट जाए।
वेदना मतलब जी,
रुचि तो है ही, और रुचि से भी आगे बढ़कर के ये परिणमन होता है, जिसमें जो चलते हुए विकल्प का दुख सहा नहीं जाता। विकल्प से छुटकर निर्विकल्प होता है तब तो अनुभव होता है ना। हाँ, तो ये विकल्प से छूटना कब होता है, और वो भी सहज रूप से छूटना कब होता है? कि जब ये बर्दाश्त नहीं होता है तब तो। जहां तक वो बर्दाश्त होता है वहां तक वो छूटने वाला नहीं है, एक स्वाभाविक परिस्थिति है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में अनुभव होता है, जिसको हुआ वो उसको उसी परिस्थिति में हुआ है। चाहे यह विकल्प हमारे स्वरूप संबंधित चिंतन वाला क्यों न हो, ये भी आकुलता का उत्पादक है। 144 गाथा में आया कि नहीं आया, ये भी आकुलता का उत्पादक है। और आकुलता भी एक अनुभव की चीज है, आकुलता भी वेदन की चीज है। जब एक प्रश्न बर्दाश्त नहीं होता है तब ही इससे उठ करके निर्विकल्प दशा में आ सकते हैं। और अंतर्मुख ज्ञान को अंतर्मुख किस प्रकार किया जाता है, ये प्रश्न बहुत महत्व का है। और ये विषय भी हमेशा हमेशा रहस्यभूत रहा। क्यों? कि अब तक जितना ही जीव ने परिणाम किए हैं वो बहिर्मुख परिणाम ही किए हैं, चाहे ज्ञान के हैं आचरण के हैं। और बहिर्मुख परिणाम का विषय हमारा स्वरूप नहीं है। भीतर में जो परम तत्व है अपना स्वरूप, यह अंतर्तत्व स्वरूप है। और अंतर्तत्व को विषय करने के लिए परिणमन को अंतर्मुख होना ही एकमात्र उपाय है। इसके बिना ये विषय होता नहीं, अंतर्तत्व विषय रूप होता नहीं। अब सवाल वो है कि वो किस प्रकार हुआ जा सकता है। तो देखिए, हम फिर से वही विषय पर आते हैं, क्योंकि अनुभव और अंतर्मुख होना ये तो एक ही पर्याय का नाम है, वो कोई अलग अलग पर्याय नहीं। जो आत्मानुभव है वही अंतर्मुखी पर्याय है, अंतर्मुखी पर्याय वही आत्मानुभव है। तो बात तो घूम फिर के वहीं आती है कि ज्ञान में जो ज्ञान वेदन है उसमें वेदन करने वाला भी ज्ञान है और वेदन में आने योग्य है वही, वो भी वही का वही ज्ञान है। मतलब क्या हुआ कि ज्ञान स्वयं वेद वेदक रूप है और ऐसे ज्ञान का वेदन कहो या ज्ञान के ज्ञान को स्वयं की अनुभूति कहो, ये ज्ञानानुभूति उसको बोला जाता है। और जो आत्मानुभूति है वो ज्ञानानुभूति के सिवा और कुछ है ही नहीं। इसका ठोस शास्त्राधार है समय सार के 13वां नंबर का कलश ये बात बोलता है कि आत्मानुभूति इति ज्ञानानुभूति किल मैंने वास्तव में जो आत्मानुभूति है वही ज्ञानानुभूति है। वास्तव में ऐसा जान करके आत्मा आत्मा में प्रवेश करता है, आत्मा आत्मनी निवेश्य, ऐसा संस्कृत शब्द पड़ा है। समीसाल नहीं है, थोड़ा कल से मुख्य शास्त्र तो रेफरेंस के लिए इधर रख लें। तो आत्मानुभूति है वही ज्ञानानुभूति है। क्यों कि जो त्रिकाली आत्मा है उसमें तो अनुभूति होती नहीं, उसमें तो वेदन होता नहीं, क्योंकि वो तो सामर्थ्य रूप है। जो अनुभूति होती है वो तो पर्याय में होती है, पर पर्याय में भी ज्ञान में होती है। तो ये जो ज्ञानानुभूति है वही आत्मानुभूति है। ये पंडरगाथा के पहले विषय का उद्बोधघात करते हुए टीकाकार आचार्य से ने इस कलश को लिखा है। और इस ज्ञान का ज्ञान को अनुभव होना यही ज्ञान की अंतर्मुख दशा है, यही ज्ञान की अंतर्मुख दशा है। नीचे वाला है ये समझ रहा है। आत्मानुभूति इति शुद्ध नयात्मिकाया ज्ञानानुभूति यमेव केलेति बुद्धा। जो आत्मानुभूति है यह शुद्ध नयात्मिक है, मैंने शुद्ध नय का जो उपयोग है वही आत्मानुभूति है, क्योंकि वह आत्मा के शुद्ध स्वरूप के अवलंबन से चल रहा है। ज्ञानानुभूति इति ज्ञानानुभूति यमेव किलेति बुद्धा। वास्तव में यही ज्ञानानुभूति है, ऐसा जान करके बुद्धवा मैंने जान करके आत्मानं आत्मनि निवेश्य, आत्मा में आत्मा से प्रवेश करके, यही आत्मा का आत्मा में प्रवेश है। कैसे? सो निष्प्रकंपम निष्कंप भाव से, अचलित भाव से, स्थिर भाव से। तो क्या मालूम पड़ेगा कि एकोस्त नित्यम अवबोध घन समन्तात, मैं चारों ओर से ज्ञान घन एक आत्मा ही हूं, ऐसा अनुभव होगा। तो अवलंबन की प्रधानता से उसको आत्मानुभव कहते हैं और वेदन की प्रधानता से उसको ज्ञानानुभूति कहते हैं। लक्ष्य और अवलंबन त्रिकाली का आत्मा का होने से उसको आत्मानुभूति कहते हैं और वेदन ज्ञान का होने से उसको ज्ञानानुभूति कहते हैं। एक ही अवस्था का दो नाम है, अवस्था दो प्रकार की नहीं है, एक ही अवस्था का ये दो नाम है। तो अंतर्मुख कैसे हुआ जा सकता है इस प्रश्न का ये समाधान है कि ज्ञान से ज्ञान का अनुभव होते ही उपयोग बहिर्मुख होगा नहीं। शर्त उतनी है, सब्जेक्ट टू कंडीशन, शर्त उतनी है कि हमारा लक्ष्य त्रिकाली पर होना चाहिए। लक्ष्य में अगर त्रिकाली नहीं होता तो ऐसा स्वसंवेदन ज्ञान में पैदा होता नहीं। इस तरह से अंतर्मुख हुआ जा सकता है। ये बात तो बात है लेकिन परिणमन की बात जो है वो परिणमन से ही समझी जाती है, वेदन की बात वेदन से समझी जाती है, बातों से नहीं। मिठाई खाने से पता चलता है, इसका वर्णन करने से मीठापन मालूम पड़ता नहीं है। तो उस विषय की उसी प्रकार की तथारूप योग्यता में आकर के मैंने स्वरूप का लक्ष्य होकर के फिर वही प्रयोग चलता है वेद ज्ञान के दौरान, तभी अंतर्मुख हुआ जा सकता है, ज्ञान सामान्य का वेदन का आविर्भाव हो सकता है और अनुभव की प्राप्ति हो सकती है। वो बात तो फिर आगे के परिणामों की परंपरा की है कि पूर्व तैयारी में क्या क्या होता है। तो जिसको स्वरूप की पहचान नहीं हो उसके पहले उनको सदगुरु की पहचान होती है। बिना सदगुरु की पहचान किसी को स्वरूप की पहचान न हुई है न होगी भी, क्योंकि ये प्रगट ज्ञान ज्योति है और प्रगट ज्ञान ज्योति से ही दूसरे ज्ञान अप्रगट ज्ञान ज्योति का पता चलता है। तो इसको कहते हैं हमारे शास्त्रकार गुरुगम कहते हैं, गुरुदेव भी यही कहते थे कि ये गुरुगम है, मैंने गुरु की गम गुण मैंने उसका जो स्वरूप है इसकी जो अंतर परिणति है उसे उनको पहचाना जाता है और फिर आत्मा की पहचान होती है। जी
त्रिकाली का लक्ष्य होना चाहिए, इसका क्या तात्पर्य है?
त्रिकाली की पहचान होती है, भाव भाषण होता है, निश्चय होता है, प्रतिभास होता है, अस्तित्व ग्रहण होता है, इसमें एक ही पर्याय का अलग अलग नाम है। तब उसी काल में त्रिकाली लक्ष्य गोचर होता है लक्षण पूर्वक, और त्रिकाली का लक्ष्य होने के बाद ही ये ज्ञान का ज्ञान वेदन के आविर्भूत भाव होने का प्रयोग चलता है। इसके पहले चल सकता नहीं, और जब ये प्रयोग चलता है तब अनुभूति तक कोई मुमुक्षु पहुंचता है। जी
त्रिकाली का मूल लक्षण क्या होगा?
त्रिकाली का लक्षण ज्ञान लक्षण है, ज्ञान लक्षण से ही वेदन लक्षण से ही वो लक्ष्य की पहचान होती है। जो लक्षण लक्षण की चर्चा में परिशिष्ट में अमृतचंद्र आचार्य ने कहा कि प्रगट ही ज्ञानम ज्ञान मात्रस्य स्वसंवेदन सिद्धत्वात्, और लक्षण लक्षण की चर्चा में कहा, तो यहां से त्रिकाली का लक्ष्य से लक्षण से लक्ष्य की पहचान होती है और वो लक्षण भी वेदनभूत होता है। हाँ हाँ इस भाव में, हाँ हाँ पूर्व भूमि में मिला था, तो उन्होंने उल्लेख किया है 194 नंबर के पत्र में, उन्होंने उनको ज्ञान प्राप्ति हमें इससे हुई थी, उनको भी गुरु मिले थे पूर्व भाव में मामिनी क्षेत्र में। हाँ वो बात बहन श्री ने जाति स्मरण ज्ञान में कही है कि फतेह नंद कुमार को अध्यात्म तत्व की रुचि वहां बहुत थी, तो उस रुचि के वशात उन्होंने वहां संस्कार जले थे। तो संस्कारी जीव को तो बिना गुरु भी इस भूमि में ज्ञान होता है। अब देखिए विचारणीय प्रश्न वो है कि जब श्रीमद जी को इस भूमि में गुरु नहीं मिले थे फिर भी ज्ञान हुआ, ये बात प्रसिद्ध है, तो फिर श्री गुरु के विषय में इतनी कलम क्यों चलाई? अगर गुरु मिले होते और कलम चलाते तो कहते भी क्या है अपने उपकार्य के प्रति, वो इतना लिखते हैं, हो सकता है अतिशयोक्ति से भी लिखा होगा, लेकिन जब गुरु मिले नहीं फिर भी गुरु के विषय में इतने बात करते हैं तो कुछ हमको लाइट होना चाहिए कि बात कुछ है इसमें, कि गुरु तो मिले नहीं फिर भी गुरु के विषय में इतने जोर शोर से कैसे बात करते हैं, वास्तव में कुछ दम है उसमें। और कहीं लोग ऐसे विषय को निमित प्रधानता वाला विषय समझते हैं, वो बात वैसी नहीं है। गुरु की पहचान उपादान की योग्यता में होती है, एरे गेरे को होती नहीं है। तो ये तो योग्यता की प्रसिद्धि निमित प्रधानता से कर रहे हैं, उपादान की प्रसिद्धि निमित परक कथनों से हो रही है। बात तो उपादान की है, वहां भी निमित की बात है ही नहीं, लेकिन इसके लिए भी योग्यता चाहिए। देखो 194 में वो लिखते हैं कि भाव और प्रतिबद्धता से निरंतर विचरते हैं ऐसे ज्ञानी पुरुष के चरणारविंद, उसके प्रति अचल प्रेम हुए बिना और सम्यक प्रतीति आए बिना सत्स्वरूप की प्राप्ति होती नहीं, अपने सत्स्वरूप की प्राप्ति होती नहीं। और ऐसा अचल प्रेम और सम्यक प्रतीति आने से अवश्य नियम से यह मुमुक्षु जिसके चरणारविंद ने सेवित किए हैं उसकी दशा को प्राप्त होता है, मैंने ज्ञान दशा को प्राप्त होता है। यह मार्ग सभी ज्ञानियों ने सेवन किया हुआ है, भूतकाल में वर्तमान में सेवन करते हैं और भविष्य में सेवन करेंगे। ज्ञान प्राप्ति इस प्रकार से हमको हुई थी, तो हमको हुई थी मेरे इस भाव में तो कोई था नहीं, तो हुई थी का मतलब क्या हुआ कि पूर्व भाव में हुई थी, तो पूर्व भाव में हुई थी इसका कारण क्या हुआ कि जाति स्मरण ज्ञान उनको वर्तता है, इसलिए वो बोल सकते हैं, वरना कैसे बोल सकते हैं। वर्तमान में यही मार्ग से होता है और अनागत काल में भविष्य में भी ज्ञान प्राप्ति का यही मार्ग है। कितना वजन दिया है, सर्व शास्त्रों का हम कहते हैं वो बात नहीं है, हमारा अनुभव तो बोलता ही है, लेकिन सर्व शास्त्रों का बोध लक्ष्य देखने में आए तो यही है। और जो कोई प्राणी छूटने को चाहता है संसार किसे, उसे अखंड वृत्ति से यही मार्ग का आराधन करना, ये मार्ग आराधन किए बिना जीव अनादि काल से परिभ्रमण किया है। जब तक जीव को स्वच्छंद रूपे अंधत्व है, क्या स्वच्छंद रूपे अंधत्व है, मैंने अपनी मति कल्पना से वो चलना चाहता है, वहां तक इस मार्ग का दर्शन होता नहीं, सूझ नहीं आएगी अंदर में। इसलिए जीव को इस मार्ग का विचार करना किस तरह से, दृढ़ मोक्षेच्छा पूर्वक, दृढ़ मोक्षेच्छा छूटने की इच्छा दृढ़ होनी चाहिए और इस मार्ग इस विचार में अप्रमत रहना, प्रमाद मत करना, तो मार्ग की प्राप्ति होकर के अंधत्व टलेगा यह निशंक मानना। अनादि काल से जीव उल्टे मार्ग में चला है, यद्यपि उसने जाप तप शास्त्र अध्ययन आदि अनंत बार किया है, तथापि जो कुछ भी अवश्य करने योग्य था वो उसने किया नहीं, जो कि हमने प्रथम ही दर्शाया है, जो आगे हमने बोला वो नहीं किया है, बाकी सब कुछ कर लिया है। ऋषभदेव जी भगवान पहला तीर्थंकर ने भी 98 पुत्र का यही उपदेश दिया था। ऐसा करके और भी विस्तार किया है, मुद्दे की बात तो वही है। दिया तो था लेकिन हम समझे नहीं। हाँ, उसमें क्या है कि ये भी एक आपत्ति को आमंत्रण देने की बात है सदगुरु के लिए। सदगुरु को सदगुरु के लिए भजन देना एक नई आपत्ति खड़ी करने की बात है। 212 में वो आपत्ति की बात वो करते हैं। 212 में उन्होंने ये बात कही है कि तुम फिर भी वो अनुमोदन करते थे कि कोई कम समझने वाले भी व्यवसाय आदि छोड़ करके सोनगढ़ में निवास करते थे तो उनकी प्रशंसा करते थे कि देखिए होती ही नहीं। तो बात हुई बेंसरी की और कुछ लोग बेंसरी के विषय में बहुत इनकी महिमा करने लगे, जन्म जयंती वगैरह बहुत उसको घिरे से बधाई देने के वगैरह बहुत होने लगा। तो गुरुदेव कितना अनुमोदन करते थे और क्या क्या बोले थे कि गुरुदेव के इस वचनों को हमारे पंडित लोग भी बर्दाश्त कर सके नहीं, तो दूसरे ज्ञानी के विषय में बोले तो बर्दाश्त नहीं करे नहीं कर सके तो अपने विषय में बोले तो क्या हो जाता हाँ तो अभिप्राय तो खुला हो गया कि नहीं हो गया कि उनका क्या अभिप्राय था, कितना ज्यादा बोले हैं हाँ लोग बर्दाश्त नहीं कर सके, इतना ज्यादा बोले हैं। वो तो दूसरे ज्ञानी थे इसलिए बोले, अपने विषय में कभी इतना नहीं बोलते। हाँ मैं सही कह देते थे। सुगानी जी ज्ञानी हुए, ने अपने गुरु की महिमा कितनी किया। निश्चय प्रधान दृष्टि के वचन जो सुगानी जी के हैं, इतने तीखे वचन और तो कहीं आपको दिखने भी मिलेंगे नहीं। वही सुगानी जी गुरु के विषय में क्या लिखते हैं कि मेरे गुरु तो अनंत तीर्थंकर से भी मेरे लिए अधिक है। ओवरबाउंड क्या ये छक्का मारा है? छोटा तो बाउंड्री में मिलता है, ये तो ओवरबाउंड बात है। अनंत तीर्थंकरों को पीछे रख करके छद्मस्त श्री गुरु को आगे करते हैं, इसका मतलब क्या? प्रत्यक्षता की बात कोई अलग होती है, परोक्षता की बात कोई अलग होती है। क्या सुगानी जी निमित्त प्रधाने परिणमन वाले थे? क्या साहस है किसी को बोलने का? ऐसा कर सकते हैं साहस? इनके उपादान प्रधान वचन के तो कोई बराबरी करने की भी कोई परिस्थिति नहीं है। फिर भी जहां गुरु का विनय विवेक होता है तो वो भी ओवरबाउंड होता है। और यही निश्चय प्रधानता वालों की निशानी है कि निश्चय आभास वहां नहीं है। क्या इतनी निश्चय प्रधानता होने के बावजूद भी निश्चय आभास नहीं है, इसका ये सबूत है? और वही सबूत आपको नियम सार में मिलेगा। जो नियम सार 50वीं गाथा में ऐसा बोलता है कि शायद भाव परद्रव्यम प्रभाव हेम इति, वही नियम सार में आप भक्ति की प्रधानता देख लीजिए। श्री गुरु की भक्ति कैसे कैसे पद्म प्रबलधारी देव ने किया है, तो इसके पीछे कोई रहस्य है, ये बात हमारे समझ में आनी चाहिए। जब तक ये बात हमारी समझ में नहीं आएगी वहां तक सही बात समझ में नहीं आएगी। एक प्रश्न उठाया है उन्होंने, बहुत मार्मिक विषय है, थोड़ा हजम करने में भी तकलीफ हो जाएगी ऐसी बात है। देखिए भगवान श्री महावीर स्वामी से फिलहाल जैन शासन प्रवर्तित हो रहा है। वर्तमान में जो जैन शासन प्रवर्तित हो रहा है उसका तीर्थादिनाथ जो कोई है वो तो भगवान महावीर स्वामी है। ये ज्यादा उपकारी है या प्रत्यक्ष हित में प्रेरणा देने वाले और अहित से निवारण करने वाले ऐसे अध्यात्म रूपी सदगुरु ज्यादा उपकारी? खुद ने प्रश्न उठाया है, अपने प्रश्न को और स्पष्ट कर रहे हैं। सुनिए यह प्रश्न माकू भाई की ओर से है। माकू भाई माणिकचंद भाई करके इनके पार्टनर थे बड़ौदा के, उनकी ओर से ये प्रश्न आया है। यहां पर इतना विचार रहता है कि महावीर स्वामी सर्वज्ञ थे। महावीर स्वामी तो सर्वज्ञ हैं और प्रत्यक्ष पुरुष आत्मज्ञ सम्यक दृष्टि है, अर्थात महावीर स्वामी विशेष गुण स्थानक में वर्तते थे, ऐसे थे। 13वें गुण स्थान वर्ते थे, महावीर स्वामी की प्रतिमा की वर्तमान भक्ति करें, उतने ही भाव से प्रत्यक्ष सदगुरु की भक्ति करें, तो दो में से हित योग्य विशेष कौन सी भक्ति कहने योग्य है, इसके उत्तर आप दोनों विचार करके विस्तार से लिखिएगा। उन्होंने तो प्रश्न ही रखा है, उत्तर नहीं दिया है। अब देखिए कि जो आत्मा के सम्यक दृष्टि है वो तो चतुर्थ गुण स्थान वाले होते हैं और सर्वज्ञ भगवान तृतीय गुण स्थान में विराजमान होते हैं, तो गणित के प्रथम ही क्लास में बैठने वाला, मैंने हमारे गुजराती में एकड़िया बोलता है, एक दो तीन चार पांच छह सात दस बीस जो जानता है तो नौ और तेरह को चार और तेरह को जानता है कि क्या डिफरेंस है, तो उतना कोई ये प्रश्न करने में कोई गणित का गणितानुयोग का तो विषय है ही नहीं कि चार गुण स्थान वाला और तेरह गुण स्थान वाले में क्या अंतर होता है। ऊपर नीचे की बात तो सामान्य बुद्धि में भी समझ में आती है, तो फिर इस प्रश्न उठाने के पीछे क्या रहस्य है कि प्रत्यक्ष उपकारी की जो भक्ति होती है इससे जो दर्शन मोकम होता है वो प्रतिमा जी की भक्ति से दर्शन मोकम होता नहीं, वो कहने का अभिप्राय है। तो वो तो जिसको उपकार होता है वही जानता है, जो मृत्यु के मुख से बचता है उन्हें जानता है कि बचाने वाले को हम क्या कहें, बस उतनी सी बात है।
संदर्भ में ये प्रश्न अभी जो चल रहा है इसी के संदर्भ में,
केवल छद्मस्त गुरु के वंदन करे इसका क्या हार्द है, केवल छद्मस्त गुरु का वंदन करता नहीं, केवल ज्ञान अवस्था में वंद्य वंदक भाव होता ही नहीं, तो प्रश्न नहीं रहता कि केवली वंदन करें। इस बात जरूर है कि केवली के ज्ञान में त्रिकाल ज्ञानी होने से भूतकाल में अज्ञान अवस्था में से किस छद्मस्त गुरु से हमें ज्ञान हुआ उसका पता चल जाता है, तो उसका कितने भी भव पहले हो, जैसे भगवान महावीर स्वामी को दसवें भव में यह हुआ था, उसी के पर्याय में थे तो उनको चारण रुद्धिधारी गुरु से ज्ञान हुआ था, तो उसका ज्ञान उनको केवल ज्ञान होने में हो जाता है, उन्हें गुरु का विनय है, लेकिन मंदिर मंदिर भाव तो तेरहवीं गुण स्थान में हो ही नहीं सकता। ऐसा है कि वहां पंचकल्याणक प्रतिष्ठा नहीं होती, मूर्ति की पंचकल्याणक प्रतिष्ठा जैसे भगवान की होती है ऐसी नहीं होती, स्टैच्यू के रूप में स्थापित करते हैं उतनी सी बात है, तो वो तो हम लोग भी करते हैं लेकिन वहां कोई पंचकल्याणक प्रतिष्ठा नहीं होती। हाँ बंधन वगैरह होता है उसमें कोई दोष नहीं है, कुछ भी हो सकता है उसमें कोई आपत्ति नहीं है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पंचकल्याण प्रतिष्ठा विधि पूर्वक नहीं होती है, बाकी सब कुछ हो सकता है। अर्घ तो कोई चढ़ाते नहीं, हमारे यहाँ तो कोई अर्घ चढ़ाते नहीं, लेकिन वंदन करें वो भी एक पूजा का अंग है और अर्घ चढ़ाना वो भी पूजा का अंग है, स्तुति करना वो भी पूजा का अंग है।
आज
हाथ जोड़ना वो भी पूजा का अंग है, ये सब पूजा का ही अंग है। पूजा के तो बहुत से अंग है, एक अंग से करें या दो अंग से करें, बात तो एक ही हो जाती है ना। हाँ जोड़ सकते हैं। हाँ जोड़ सकते हैं। इसमें छल ऐसा ग्रहण नहीं करना चाहिए कि चलो हमें मंदिर जाने की जरूरत नहीं, घर में रख लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जिसको मंदिर जाने का आलस होते हैं या आने जाने का डिस्टेंस के हिसाब से आकुलता करते हैं, चलो तो घर में रख लो प्रतिमा देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सही है, दिगंबर ही सही है। नहीं, वो उनके शब्द में इसलिए नहीं, वो इनके शब्द में इसलिए नहीं आया कि मुमुक्षु लोग मंडन खंडन में चले जाएंगे तो उनको नुकसान हो जाएगा, तो उस नुकसान के बचाने के हेतु से उन्होंने ये बात नहीं कही। उतनी सी बात है, लेकिन खुद ने तो 764 नंबर के पत्र में और अपने अपूर्व अवसर में अपना अभिप्राय खुला कर दिया है, तो वो तो अपने को तो उनका अभिप्राय को समझना है। हमारे शब्द में उसने क्यों नहीं कहा, वो आग्रह हमें नहीं रखना चाहिए। उनके अभिप्राय को समझे तो अच्छी तरह समझ सकते हैं, लेकिन वो ऐसा आग्रह रखे कि हम कहें या फलाना कहे, वैसा उन्होंने क्यों नहीं कहा, तो वो बात तो ठीक नहीं लगती है।
स्वयं कौन से मंदिर में जाते
थे? स्वयं भी दिगंबर मंदिर में दर्शन करने को जाते थे, दूसरे भोलवाड़ा में जौहरी बाजार से उठ करके वो जाते थे पायधुनी से, तो बीच में श्वेतांबर का बड़ा मंदिर आता है गुरु जी का, वहां ही जाते थे, और आगे बढ़कर के गली में दूसरे भोलवाड़े में जो मंदिर है दिगंबर, वहां ही जाते थे। तो बीच वाला मंदिर को छोड़कर के क्यों जाते थे? तो उनकी चर्या से, उनके शब्दों से ये बात जाहिर है और अपनी भावना है। नग्न भाव मुंड भाव सह स्नानता दंत धोवन आदि परम प्रसिद्ध जो, अब क्या बात बाकी रहेगी, फिर भी हम शंका करें इन पर तो हम उनको समझ नहीं पाते हैं, समझ सकते नहीं है, और हमारे कुछ शब्द पर आग्रह है, हमारे हमारी भाषा के आग्रह है, हमारी शैली का आग्रह है, वो तो नहीं होना चाहिए, बात तो साफ है। और ज्ञानी हुए तो बात तो खत्म हो गई, हमारे लिए भक्ति के स्थान में है, भूल से भी कुछ शंका करके हम अभक्ति नहीं करें, यही हमारे लिए उचित रहेगा। वो तो क्या है कि सुनने नहीं उनको भी, श्रीमद राजचंद्र जी के अनुयायी है तो सभी उनको समझे हैं, ऐसा हम कैसे मान सकते हैं? क्या गुरुदेव को हम लोग पूरे समझे हैं? हम गुरुदेव के जितने भी अनुयायी है वर्तमान में, अभी तो गुरुदेव तो अभी अभी तो थे, क्या हम लोग पूरे उनको समझे हैं, पहचाने हैं, अनुसरण करते हैं क्या? आज हमारे बीच में क्या हालत है? इससे भी खराब हालत है, श्रीमद जी वालों की जो हालत है इससे भी खराब हालत तो हम लोगों की है। नहीं, लेकिन पक्के दिगंबर कहलाने के लिए है, योग्यता क्या है? सवाल तो योग्यता का पैदा होता है। देखिए, हमने जान लिया है कि श्वेतांबर कल्पित है, दिगंबर सही है, हमने क्या हमारा भलाई किया, हमने कितनी योग्यता ये समझ करके प्राप्त कर ली, बात तो नतीजा से होती है, फल क्या आया इसका। हम तो इन लोगों से भी ज्यादा झगड़े में फंसे हुए हैं, योग्यता हमारी कहाँ है। तो इस इतना जानने से क्या फायदा किया हमने, कोई फायदा तो नहीं रहा। और मूल दिगंबर जो लोग हैं, सीखने की बात नहीं करते हैं। आज कितने देव देवियों में फंसे हुए हैं देख लीजिए, क्या हो रहा है हमारे यहाँ। कुबेर की मान्यता में आए कि नहीं आए, तो दिगंबर दिगंबर करके क्या फायदा हुआ। कितने देव देवियों में कुदेवी में फंस गए लोग, और कितने पैमाने में हो गए। दिगंबर का मतलब क्या रहा, कोई मतलब ही नहीं रहा आजकल तो। ये अच्छी बात है, ये गुरुदेव का प्रताप है, ये गुरुदेव का प्रताप है। हम इनका आभारी है, इनके उनको पुकार को माने, इसलिए वो बात है। लेकिन योग्यता हमें होनी चाहिए कि जिस योग्यता से इनका गौरव बढ़े। आज इनका गौरव हम लोगों ने बढ़ाया नहीं है, ये हमारे लिए शर्मजनक बात है, है कि नहीं। इसमें क्या है कि उनकी उपस्थिति में वो लोग थे नहीं। हम लोग तो गुरुदेव के प्रत्यक्ष योग में गुजरे हुए हैं, इनके प्रत्यक्ष योग में कौन थे। 100 साल पहले तो कोई भी है ही नहीं, तो संभव है कि ऐसा ही हो जाएगा। तो 2500 साल में दिगंबर संप्रदाय में इतनी विकृति आ गई, तो प्रत्यक्ष योग में ये होना संभव नहीं था। परोक्ष में तो कुछ भी गड़बड़ हो ही जाती है, कितनी गड़बड़ हुई देखो। हाँ, तो ये वो तो संभव है कि विकृति आ सकती है, लेकिन मूल पुरुष को आज हम कैसे बोल सकते हैं। भगवान महावीर स्वामी के विषय में कुछ बोल सकते हैं क्या। आज के जैन को देख करके कोई भगवान महावीर स्वामी पर बोले कि ऐसा क्यों हुआ, ये उचित है क्या। ये उचित नहीं है। आज हम लोगों में ठिकाना नहीं है, इसका मतलब उनका क्या दोष हो गया। हाँ, ऐसी बात है। आज 131 नंबर के परमाज्ञ सार का एक वचनामृत है, उसमें देव गुरु शास्त्र आदि का विनय कैसा होना चाहिए। और वो विनय निमित्त का विवेक विनय नहीं है, वो उपादान का विनय है, ऐसा करके काफी लिखा है। गुरुदेव ने भी बहुत सी बातें की हैं, सभी और से मिल कर लेना चाहिए। तो समय तो हो चुका है अपना।